ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सभी एक बार प्यार से मुस्कुरा के बोलेंगे गुड मॉर्निंग। व्हाई इज योर मॉर्निंग गुड टुडे? हां जी, बिकॉज यू ऑल आर हियर। आप यहाँ हैं, यहाँ के बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस को आप फील कर रहे हैं और सुबह से लेकर आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव इनपुट वन आफ्टर द अदर मिलते जा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हार्मनी इन रिलेशनशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है। मेरा आपसे एक प्रश्न है। मान लीजिए जितनों से हमारी जान पहचान है सबके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, परंतु किसी भी कारण से किसी एक के साथ अनबन है, उनसे हमारी थोड़ी बातचीत उस तरीके से नहीं हो पाती है जैसे कि हर दूसरे से हो पाती है, डज इट मैटर? चाहे वो फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे सोसाइटी में कोई है, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे आपके कार्यक्षेत्र में आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके साथी ऐसे कोई हैं जिनके साथ आप उतनी कंफर्टेबल नहीं हैं, डज इट मैटर? आप में से किस किस को लगता है मैटर करता है? ओके, आप में से किसको लगता है कि सबके साथ अच्छा है ना, एक के साथ नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। यस, हाँ हाँ करिए। ओके 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 ओके, तीन चार लोगों ने हाथ उठाया कि सबके साथ अच्छा है, किसी एक दूसरे के साथ दो के साथ यदि नहीं भी है तो ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन जो हमारा तजुर्बा आज तक का रहा है और जहां तक हमने लाइफ को अध्यात्म से जुड़कर समझा है, हमारा तजुर्बा यही कहता है कि मैटर करता है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। उस नाते से हर एक के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, बोलचाल अच्छी होती है, तो हम उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। और यदि वो व्यक्ति हमारे सामने कभी आ जाए जिनसे हमारा थोड़ा अच्छा नहीं है तो कैसा लगता है? जिन्होंने कहा था मैटर नहीं करता, कृपया आप जवाब देंगे। अगर वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए, नॉर्मली हम चाहते नहीं है कि उससे हमारा आमना सामना हो, परंतु आपके न चाहते हुए भी मान लीजिए वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए जिससे आपकी थोड़ी अच्छी नहीं बनती है तो कैसा होता है? आप इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, आपको अगर उनको क्रॉस करके जाना है और एक दूसरा भी रास्ता है तो आप क्या करेंगे? सब अनुभवी है, हम वो रास्ता नहीं लेंगे, हम प्रिफरेबली एक दूसरा रास्ता ले लेंगे। ये वाला कन्वीनियंट है, इजी है, डायरेक्ट है, सीधा रास्ता है, फिर भी हम सिर्फ इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? एक लंबा वाला रास्ता, घूमते फिरते जाने वाला रास्ता भी तय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस रिलेशन को अच्छा बनाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। तो आज हम सीखेंगे ऐसे कौन से टिप्स को हम अपनाएं कि कभी किसी से अनबन ना हो, और यदि हो भी जाए तो हम इसे इतने अच्छे से हैंडल कर सके कि वो अनबन बहुत जल्दी दूर कर सके। तो चलिए हम देखते हैं, चाहे कार्यक्षेत्र हो, चाहे हमारा परिवार हो, हर एक के साथ हमारे संबंध मधुर होने अति आवश्यक है। मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, वी हैव लर्नड flying like birds in the air, we have learned swimming like fishes in the deep water, but एक मनुष्य के नाते से एक मनुष्य के साथ कैसे पेश आना है वो हमने आज तक नहीं सीखा और समझा है, कुछ समझा है और जहां तक मैं समझती हूं अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। रिलेशनशिप क्या है? इट इज सिंपली गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी। आपको कैसे पता चलेगा कि इनके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं और इनके साथ नहीं हैं? कई बार होता है आप पहली बार मिले हैं परंतु उनसे मिलके आपको इतना अच्छा नहीं लगा, होता है ऐसा? पहले की कोई बातचीत नहीं है, पहले का कोई इंटरेक्शन नहीं है, पहली बार मिले हैं, पहली मुलाकात है, लेकिन उनसे मिलके हमको बहुत अच्छा नहीं लगा। और कोई होते हैं जिनसे मिलके हमको बहुत 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 अच्छा लगता है। वो जो बहुत अच्छा लगता है, दैट्स बिकॉज जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ दैट वॉज पॉजिटिव, और जो अच्छा नहीं लग रहा है दैट्स बिकॉज यस, जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो एनर्जी नेगेटिव है। अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि वो एक्सचेंज नेगेटिव क्यों होता या फिर वो एक्सचेंज पॉजिटिव क्यों होता है, और अगर किसी के साथ नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज हो भी रहा है तो हम उसे पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। नीड फॉर रिलेशंस, नो ह्यूमन कैन लिव इन आइसोलेशन। आपको यदि कहा जाए आपको मुंह मांगा तनख्वाह मिलेगा, लेकिन आपकी एक पोस्टिंग ऐसे स्थान पे होगी जहां कोई दूसरा बंदा नहीं होगा, आप किसी से भी ओवर फोन, ईमेल या किसी अन्य जरिए से संपर्क नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, कितने लोग जाएंगे पोस्टिंग पर? हां जी, आपको यदि महीने के 5 लाख चाहिए वो भी मिलेगा, 25 लाख चाहिए वो भी मिलेगा, 50 लाख चाहिए वो भी मिलेगा, कौन जाना चाहेंगे? कोई यदि पैसे के लालच में चले भी जाए तो मेरी समझ में 1-2 महीने में उब जाएंगे। यस और नो? यस और नो? यस। हमें औरों की जरूरत है और औरों को हमारी जरूरत है। जब इन छोटी छोटी बातों को हम समझ लेते हैं तो रिश्तों को स्वीकार करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। क्या चीजें हमारे रिश्ते को बिगाड़ती है ये हम सब जानते हैं, बहुत फास्ट इन चीजों को थोड़ा सा ले लेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। एक बार एक पिताजी अपने 4 बच्चों को लेकर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। चारों बच्चे बहुत शैतानी थे। एक बच्चा अपने जो को पैसेंजर्स थे किसी के शर्ट से पेन खींच रहा है, किसी के शर्ट को खींच रहा है, दूसरा बच्चा किसी के बाल खींच रहा है। तो उस बॉगी के सारे पैसेंजर्स लगभग आधे घंटे के अंदर परेशान हो गए थे इन बच्चों से, और सबके मन में एक थॉट चल रहा था कि अगर ये व्यक्ति अपने बच्चों को संभाल नहीं सकता तो इनको लेकर ट्रैवल क्यों कर रहा है। पर सारे लोग संभव बर्दाश्त कर रहे थे उनके शरारतों को। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने कहा, जनाब आप इनके पिता हैं, आप इनको संभाल नहीं सकते? उस व्यक्ति ने बहुत शांत और नम्रता के साथ जवाब दिया कि भाई साहब माफ करिएगा, अभी अभी खबर आई है कि इन बच्चों की मां का देहांत हो गया है, मैं अपने को ही संभालने में लगा हुआ हूं, इनको क्या संभालूं? क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? पूरा माहौल विद इन अ मिनट चेंज हो गया। इन बच्चों से जो लोग उकता गए थे वही लोग इन बच्चों को बहलाने की कोशिश में लग गए। यस और नो? किसी के पास टॉफी है तो टॉफी निकाल के देने लगे, कोई मोबाइल में कोई ट्यून बजा के या फिर कोई कार्टून प्ले करके बच्चों को एंटरटेन करने की कोशिश करने लगे। व्हाट मेड द डिफरेंस? व्हाट मेड द डिफरेंस? यस, यस। जब उसके को पैसेंजर्स ने इसकी हालात को समझ लिया तब उनको उस व्यक्ति से इरिटेशन नहीं हुआ, रैदर उनके प्रति सिंपथी की भावना क्रिएट होने लगी। सिमिलरली हम बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, हर एक के तौर, हर एक के तरीके, हर एक के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, और कई बार इन चीजों को लेकर हम लोगों से इरिटेट हो जाते हैं। आप में से ऐसे कोई हैं जिनको कभी किसी से कोई इरिटेशन नहीं होता? तो जरा हाथ ऊपर करिएगा। सबको किसी ना किसी से कभी ना कभी इरिटेशन हो ही जाता है। मैं एक एग्जांपल देती हूं। एक बार एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे, बहुत एक्यूरेट, रेगुलर, पंक्चुअल, सिंसियर अपने वर्क में। उनका एक पियोन था जो उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से अप टू द मार्क नहीं था। उसने अपने पियोन को एक दिन बुलाया और कहा कि फलानी फाइल फलाने रैक में रखा है, जरा लेकर आना। तो जी सर कह के जाता है और फाइल लेके आता है। तो सर फाइल को देखते हैं, बोला ये फाइल थोड़ी मंगवाया था, मैंने दूसरी फाइल मंगवाया था, ये कलर बोला था तुमको। बोलता है ओके सर, अभी लेके आता हूं। फिर दोबारा जाता है, एक और फाइल लेके आता है, पर वो भी वो फाइल नहीं होती है जो ऑफिसर को चाहिए होता है। फिर ऑफिसर का पारा थोड़ा सा, पहली बार तो थोड़ा आराम से ही बोला, दोबारा थोड़ा सा पारा चढ़ा। फिर भी जब वो गलत लाया, फिर ऑफिसर ने उसको कहा ये फाइल नहीं, इस रैक में इस कलर की ये फाइल है, उस पर ये लिखिए, वो लेके आओ। जी सर। फिर जाके लेके आता, इत्तफाक वो भी वो सही फाइल नहीं होती है। अब ऑफिसर का पारा थोड़ा और चढ़ जाता है और वो ऑफिसर अपने पियोन से कहते हैं, तुझे इतनी भी समझ नहीं है, एक फाइल तीन तीन बार के बाद भी तुम मुझे लाकर दे नहीं सकते? सिर नीचे, आंखें झुकी हुई, पर थोड़ा सा हिम्मत जुटा के पियोन कहता है, साहब इतनी अकल होती तो आपकी सीट पे नहीं बैठा होता। हर एक की अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। मेरे पड़ोसी का बेटा 99 लाता है और मेरा बेटा 85, इसलिए मैं अपने बेटे से डिससैटिस्फाइड हूं। क्यों डिससैटिस्फाइड हूं? पड़ोसी का बेटा 99 लाता है और मेरा बेटा सिर्फ, मैं इतना बड़ा ऑफिसर और मेरा बेटा कितना लाता है, 85, और मैं उससे डिससैटिस्फाइड हूं, जिसके कारण से मैं उससे कुछ ना कुछ टीज करता रहता हूं, कमेंट करता रहता हूं। मेरा आपसे प्रश्न है, गलती पिता की है या गलती बच्चे की है? यस प्लीज। अच्छा, सिस्टम की गलती क्यों? अच्छा हाँ, आप सही कह रहे हैं कि हमारे समय में हम अगर 80% ले आए, इवन हमारे समय में हम 80% ले आए तो हम टॉप के स्टूडेंट कहलाते थे, और आज 95 भी लाओ तो उसकी कोई कीमत नहीं है। बट डजंट मैटर, आप छोड़ दीजिए, अभी के सिस्टम को छोड़ दीजिए, थोड़ा पिछले के सिस्टम के हिसाब से समझ लेते हैं। पड़ोसी का बेटा 75 ला रहे हैं और मेरा बेटा 60, गलती किसकी? अब तो सिस्टम की नहीं कहेंगे, तब भी पिताओं को प्रॉब्लम हुआ करता था, क्या बोलेंगे? अच्छा, इतनी प्रॉब्लम, एक्सेप्टेंस ज्यादा था, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा थी, और अभी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए हैं, एक्सेप्टेंस थोड़ा कम हो गया है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं और वो असंतोष की भावना जो है वो धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए पहली बात हमें अपने रिलेशनशिप को हर एक के साथ अच्छा बनाने के लिए चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग। एक व्यक्ति पानी से डरता है, मान लीजिए आप नेवी के ऑफिसर हो और आपका बेटा पानी से डरता है या आपकी बेटी पानी से डरती है, क्या करेंगे? अच्छा, उसको आप स्विमिंग सिखाने के लिए भेज देंगे, पर मान लीजिए वो भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जो कर सकती है, यस, वो जो कर सकती है वो सिखाइए। आप नहीं कह सकते हैं कि पानी से क्या डरना। हो सकता है कि आपकी बेटी पिछले लाइफ में कुछ ऐसा हादसा उसके साथ हुआ होगा जो पानी में वो डूब कर मरी हो, जिसके कारण उसके पानी से डर है। आप नहीं कह सकते वो पानी से क्या डरना। आपने देखा होगा कई लोग छिपकली से डरते हैं, आप में से तो कोई नहीं है, आई एम श्योर आप लोग नहीं होंगे। अच्छा मैडम बैठी है। हम नहीं कह सकते कि छिपकली से क्या डरना। हर एक की अपब्रिंगिंग अपनी है, हर एक की अपनी एक पास्ट हिस्ट्री है, हर एक की अपनी शारीरिक क्षमता है। आप कहेंगे मैं 16 घंटा काम कर सकता हूं, आप क्यों नहीं? जरूरी नहीं है आपकी जो क्षमता है वो क्षमता हर एक की हो जाए। आप कहेंगे मैं 5 मिनट में इसे कर सकता हूं, आपको 15 मिनट लगता है, दैट्स फाइन। हर एक की पोटेंशियल अलग अलग है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर पाना, ये अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए जो जिस लेवल पे है हम उसको उसके लेवल से और थोड़ा ऊपर लेने की कोशिश जरूर करें। अगर वो आ पाता है वेल एंड गुड, अगर वो नहीं भी आ पाता है तो भी वेल एंड गुड। ऐसा नहीं है कि जो जैसा है उसे उसकी वैसे हालात पे छोड़ दे। आपका बेटा फेल हो रहा है तो छोड़ दो, फेल हो रहा है एक्सेप्ट इट। नहीं, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कहां उसके मिस्टेक्स हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा पुअर है, उसमें आप स्पेशल ट्यूशन लगवाएंगे, उसको स्पेशल कोचिंग दिलवाओगे, दैट्स ऑल देयर। उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रहा है तो भी उसके उतने ही मार्क्स को हम बहुत सहर्ष स्वीकार कर सके। नहीं तो हम कहते पड़ोसी का बेटा अच्छा, मेरा बेटा इतना अच्छा नहीं। पड़ोसी की वाइफ कितनी अच्छी है, कितनी स्मार्ट है, कितनी एक्टिव है, कितना अच्छा डिलीशियस फूड बनाती है, और मेरी वाइफ पता नहीं क्या बना के रख देती है। ठीक है भोजन पड़ोसी की वाइफ हो सकता है अच्छा बनाती हो, लेकिन आपकी वाइफ में भी कुछ और खूबियां जरूर होंगी जो शायद पड़ोसी की वाइफ में नहीं होंगी। यस और नो, यस और नो, यस। आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया ऐसा कोई मानव संसार में नहीं है जिसके अंदर खूबियां भर के भगवान ने ना भेजा हो। आपको गिफ्ट में एक चश्मा देंगे आज, लेंगे? आप कहेंगे मैं तो चश्मा पहनती ही नहीं हूं, मेरा चश्मा क्या होगा? लेकिन ये चश्मा गिफ्ट तभी मिलेगा जब आप मुझे अश्योर करेंगे कि आई विल यूज इट। तो जो अश्योर करते हैं वो हाथ खड़ा करिए। ओके ओके, मुझे कम चश्मे देने पड़ेंगे फिर। ये चश्मा है जो परमात्मा से हमको मिला है, वो चश्मा है अच्छाई देखने का चश्मा। कौन सा चश्मा? हरा चश्मा पहनो सब चीजें हरी हरी, पीला चश्मा पहनो सब चीजें पीली पीली। अच्छाई देखने का चश्मा पहनो तो हर व्यक्ति में अच्छाई, हर घटना में अच्छाई, हर हालात में भी आप कुछ ऐसा पॉजिटिव देख लेंगे जिससे आपको खुश रहना, उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना आपके लिए सहज हो जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा हम एक्सेप्ट करें, उसकी हालातों को समझने की कोशिश करें। सेल्फिशनेस, दिस इज वेरी कॉमन। आज व्यक्ति धीरे धीरे सेल्फिश होता जा रहा है। पहले गांव का कल्चर था, पूरे गांव में हर व्यक्ति हर दूसरे को जानते थे, और अभी आप जितने बड़े शहर में जाएंगे आप क्या पाएंगे, लोग उतने आइसोलेटेड हो चुके हैं, पड़ोसी कौन है पता भी नहीं है। वी नेवर बॉदर कि मेरा पड़ोसी कौन है, कहां से, हाउ डज इट मैटर, मैं अपने में मस्त हूं। लेकिन ये चीजें हमारे संबंधों को क्या कर रही है, धीरे धीरे कम करती जा रही हैं। एक एग्जांपल देती हूं। एक बार दो पड़ोसन थी, एक पड़ोसन अपने घर का कचरा लेके इस पड़ोसन के घर के आगे डाल देती थी। और ये रोज का ही मामला हो गया था और वो थी भी थोड़ी झगड़ालू। इसने कई बार सोचा कि मैं थोड़ा उससे बोलूं कि यार तू रोज रोज कचरा नहीं डाला कर, परंतु उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम था मैं बोलूंगी तो क्या होगा, वो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करने वाली है और ही झगड़ने वाली है, मेरा ही मूड खराब होने वाला है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा परंतु उल्टा मुझे बुरा लगेगा। तो वो काफी दिन तक अपने मुंह को बंद रखी। फिर सोचा ऐसे कब तक चलेगा, आखिर सॉल्यूशन कुछ तो निकालना पड़ेगा। और उसे बहुत अच्छी एक तरकीब उसके मन में आई। उसने क्या किया, एक बहुत सुंदर सा टोकरा मंगाया। उस टोकरे में तमाम फल जो उस सीजन में अवेलेबल थे, बहुत सारे फ्रेश फल मंगाया और फलों से उस टोकरे को भर दिया, बहुत अच्छे से उसे रैप किया और उस टोकरे को लेके पड़ोसन के पास पहुंच गई और उसने दरवाजा खटखटाया। इस पड़ोसन ने, कौन सी पड़ोसन जो रोज कचरा, भाई साहब कह रहे कचरे वाली, वो पड़ोसन जो रोज कचरा अपने इस पड़ोसन के घर के सामने डाल देती थी, तो वो जैसे ही लेके फल का टोकरा उसके घर के सामने गई, बेल दबाया, उसने दरवाजा खोला, तो पहले उसकी नजर उसके चेहरे पे आई तो वो थोड़ी घबरा गई। क्यों घबरा गई, क्योंकि उसको पता है रोज रोज कचरा फेंकती हुई जरूर कुछ बोलेगी। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसकी नजर सुंदर से सजे हुए फलों के टोकरे पे गई और उसने पूछा कि ये आप मेरे लिए लेके आई हैं? ये बोली हां। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, उसने फिर पूछा ये आप मेरे लिए लेके आई हैं? वो बोली हां। फिर पूछा क्या सचमुच आप ये मेरे लिए लेके आई हैं? अब इसने बहुत महत्वपूर्ण जवाब दिया, कह सकते हैं यस, ताली बजाइए इनके लिए। उस लेडी ने कहा जिसके पास जो होगा वही तो वो देगा। झगड़ा नहीं करना पड़ा, उलझना नहीं पड़ा। माई क्वेश्चन टू यू, नेक्स्ट डे ये कचरा डालेगी? हाँ जी, डिपेंड्स। अच्छा सर कह रहे हैं ऐसा ना हो कि फल का के फल का ही कचरा उसके घर के सामने, बट आई होप ऐसा नहीं करेगी। आध्यात्मिकता ने हमें यही सिखाया, यदि कहीं से नेगेटिव आ रहा है और उसका रिस्पॉन्स हम भी अपनी ओर से नेगेटिव दे रहे हैं तो उसकी नेगेटिविटी क्या होगी, और बढ़ेगी। फिर मेरी नेगेटिविटी और बढ़ेगी, फिर उसकी नेगेटिविटी और बढ़ेगी और सिलसिला चलता रहेगा। पर वहां से नेगेटिव आ रहा है, हम थोड़ा सा बड़प्पन अपने में रखते हुए हम यदि अपनी ओर से पॉजिटिव देंगे तो वहां की नेगेटिविटी थोड़ी कम होगी, फिर भी थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, स्टिल पेशेंटली मैंने अपनी ओर से पॉजिटिव दिया तो वो नेगेटिविटी और कम होगी। और यदि मैं पॉजिटिव देती चली तो अनुभव ये कहता है अ डे विल कम कि वो भी सामने से पॉजिटिव देना शुरू कर देगी। आप सभी एक मिनट के लिए बच्चा बन सकते हैं, फॉर वन मिनट इफ यू डोंट माइंड, आप सभी ऑफिसर्स हैं, गुस्ताखी माफ करिएगा, पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मिनट के लिए बच्चा बन जाइए। शो ओके, अपने हाथ को ऐसे पकड़िए एज इफ आपने एक बॉल पकड़ा हो, पकड़ी हाँ, थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुमाइए बॉल को। अच्छा अब आप सोचिए कि ये जो बॉल है ये ब्लैक है, कैसा है, ब्लैक, ठीक है। तो मैं आपको 3 2 1 गो बोलूंगी और जैसे ही गो बोलूंगी आप क्या करेंगे, इसे फेंकेंगे ताकि ये दीवार में टच हो, करें ओके, थ्री टू वन थ्रो, क्या वापिस आएगा? यस, बॉल आएगा. कौन से कलर का? ब्लैक. गुड. अब फिर से एक बार हाथ ऐसे ऐसे करिए. ओके, अब ये व्हाइट बॉल है. कौन सा बॉल है? व्हाइट है. थोड़ा ऐसे ऐसे अच्छे से देखिए इसको, व्हाइट बॉल. हाँ जी, थ्री टू वन थ्रो, क्या आएगा वापस? शो, ब्लैक फेंके तो व्हाइट, व्हाइट फेंके तो ब्लैक. आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यदि हम रेस्पेक्ट देंगे, रेस्पेक्ट मिलेगा. कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेशन मिलेगा. प्रेम की भावना रखेंगे तो प्रेम की भावना उधर से आएगी. परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी सामने से थोड़ा उतना अच्छा नहीं आ रहा है. तो स्पिरिचुअलिटी ने हमें सिखाया, बहुत डिटेल इस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, पर स्पिरिचुअलिटी ने हमें सिखाया कोई कॉज नहीं है तो कोई इफेक्ट भी नहीं हो सकता है. इफ देयर इज एन इफेक्ट देयर मस्ट हैव बीन अ कॉज. अगर सामने से नेगेटिव एनर्जी आ रही है और आपको लग रहा है कि कोई कारण नहीं है, मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं किया है, कुछ बोला नहीं है, बल्कि उसका अच्छा सोचा है, पर ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका भी कारण है. कुछ भी अकारणे इस संसार में नहीं हो रहा है. जहां पर हमें स्पिरिचुअलिटी में अपने पास्ट लाइफ्स को समझने की जरूरत होती है. अगर कारण इस लाइफ में नहीं है तो कहीं पास्ट है, लेकिन जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए किए कर्मों का ही रिफ्लेक्शन है. तीसरा बताया लैक ऑफ ट्रस्ट. हां जी, एग्जैक्टली. देखिए, मदर टेरेसा को भी हेट करने वाले थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन क्या मदर टेरेसा किसी को हेट करती थी? दैट्स द पॉइंट. जरूरी नहीं है सारे लोग हमें अप्रिशिएट करें, पर हम चाहे तो अप्रिशिएट कर सकते हैं. हम आएंगे उस पॉइंट पर. जब कभी भी जितने भी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम संसार में आए हैं, उसके तीन तरह के सॉल्यूशंस पाए गए हैं. हम चलते हैं. तीन तरह के सॉल्यूशंस पाए गए हैं, उसमें से एक सॉल्यूशन है चेंज द सिचुएशन. फॉर एग्जांपल, यू डोंट लाइक योर बॉस. एक ऑप्शन बता रही हूं, अच्छा बुरा आप जज करने की कोशिश मत करिए, जस्ट सुनिए. यू डोंट लाइक योर बॉस, क्या हो सकता है? ऑप्शन नहीं है. अच्छा, एक ऑप्शन जो अच्छा नहीं है, ऑफकोर्स यहां पे लिखा क्या है? क्विट द जॉब. यू डोंट लाइक योर नेबर. आप नेबर से तो नहीं कहोगे कि भाई थोड़ा घर चेंज करो? हाँ जी, हाँ जी, आई कम टू द पॉइंट. आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना घर चेंज कर लो. यू डू नॉट लाइक योर स्पाउस, टेक अ डिवोर्स. हो रहा है आजकल, हो रहा है. यू डोंट लाइक योर फ्रेंड, लीव द फ्रेंडशिप. सो दिस इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे. और आज ऐसी हालातें कहीं कहीं, भले बहुत रेयर है, पर कहीं कहीं हो रही है. एक सेकेंड सॉल्यूशन है चेंज अदर्स. यू डोंट लाइक योर लाइक द बिहेवियर ऑफ योर कोलीग फ्रेंड, इट इज अनप्लीजेंट, इरिटेटिंग. और आपकी कोशिश क्या है? टू चेंज द पर्सन. ये सेकेंड ऑप्शन है. ये कितना पॉसिबल होता है? आप कोशिश कर सकते हैं. अगर सामने वाला इतना अंडरस्टैंडिंग है तो हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर भी ले, पर आप जैसा चाहते हैं वैसा शायद ही वो अपने आप को कर पाए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए. एंड तीसरा ऑप्शन है लर्न टू अडॉप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड पर्सनालिटीज. अब आप बताइए, इन तीनों में से सबसे इजी, सिंपल, सुइटेबल और मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन है? यस, यस. अच्छा इजी नहीं है, इट इज नॉट इजी, ओके, इजियर देन द फर्स्ट टू. यस, मेडिटेशन, ओके ओके ओके. जहां पे प्रिंसिपल्स की बातें आती हैं, जहां पे एथिक्स की बातें आती हैं, वहां पे आपको फर्म रहना होता है. यस आई डू एग्री. लेकिन जहां पे ऐसे प्रिंसिपल्स या एथिक्स वाली बातें नहीं है, वहां पे जैसा कि सर ने कहा कि थोड़ा झुक जाओ. हमारी इस इंस्टीट्यूट की हेड दादी प्रकाश मणि जी ने बहुत अच्छा एक हार्मनी का अर्थ हमें बताया. हार्मनी का अर्थ बताया हार मानी. आप कहते मैं राइट, मैं कहती मैं राइट. और एक बार के लिए मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, आप राइट है, मैं गलत हूं, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा. और दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाना है. आखिर सही क्या है, गलत क्या है, किसकी गलती थी, कौन सही था, ऐसा नहीं कि वो छिप जाएगा, वो भी सामने बात आ ही जाएगी. लेकिन वो एक सेकेंड के लिए झुक जाना, एक सेकेंड के लिए हार मानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा, किसी से ऐसी बहस न करो कि आप बहस तो जीत जाओ परंतु रिश्ता हार जाओ. तो क्या करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें कई बार तोड़ा झुकना पड़ता है, अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है. परंतु उस समय थोड़ा टफ जरूर लगता है, परंतु बाद में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है. तो पहली बात, रिलेशनशिप एट डिफरेंट लेवल्स. पहला है हमारा खुद के साथ खुद का संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए. मुझे इस पे बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कल कमल भाई ने आपको इसके बारे में बहुत कुछ बोला. इसमें तीन मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं. डू आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, डू आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, एंड डू आई अप्रिशिएट माई सेल्फ. आप में से कौन कौन है जो समझते हैं ये तीनों मेरे लिए खुद पे लागू होता है, हाथ खड़ा करेंगे. आई रिस्पेक्ट, आई लव एंड आई अप्रिशिएट माई सेल्फ. ओके, जो नहीं कर पा रहे वो कारण बताएंगे, इफ यू डोंट माइंड. जो नहीं कर पा रहे, इफ यू डोंट माइंड, आप में से कोई कारण बताना चाहेंगे, व्हाई डोंट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, व्हाई डोंट यू लव योर सेल्फ, व्हाई डोंट यू अप्रिशिएट योर सेल्फ. ओके, वेरी गुड. कई बार हम खुद की गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते हैं. हम दूसरों को तो फिर भी कर लेते हैं, पर खुद को नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम खुद को अप्रिशिएट या रिस्पेक्ट या लव नहीं कर पाते. गुड, वेरी गुड. आप में से कोई भी वॉलंटरली थोड़ा आगे आ जाएंगे सामने, एनी वन. हां जी, ये पकड़ेंगे एक बार. हां जी, इसका वजन कितना होगा अप्रोक्स?
50 ग्राम.
ओके फाइन. अच्छा, आप इसको ऐसे ही पकड़े रह सकते हैं कुछ देर तक के लिए. क्या कुछ देर के बाद इसका वजन 50 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा? भैया कह रहे नहीं, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? ओके. इनके ऐसे एक छोटे से चीज को, 50 ग्राम या उससे भी कम वजन के चीज को, यदि लंबे समय तक वो पकड़ के रखते हैं, तो भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे हाथ में तनाव बढ़ता जाएगा और मैं लंबे समय तक इसे पकड़ के खड़ा नहीं रह पाऊंगा. और मुझे भी पता है ये खड़े नहीं रहेंगे. अगर इनको फ्रीडम मिले तो फटाफट हाथ नीचे कर देंगे. इसलिए अपन क्या करेंगे, बांध देंगे इनको. क्या करेंगे, बहुत अच्छे से टाइटली बांध देंगे, ताकि वो हाथ को जरा भी मूव नहीं कर सके. ठीक है, कितने दिन के लिए? अच्छा, परमानेंटली ना भाई. भैया कह रहे रुको, अभी सेशन पूरा होने दो. सपोज 15 दिन के लिए, राइट। अब हम ह्यूमन बीइंग हैं, दया तो है ही ना, ऐसा थोड़ी एकदम से दया नहीं है। तो 15 दिन के बाद मुझे दया आई, ओहो भैया की हालत बहुत खराब है। और मैंने क्या किया, सारा बॉन्डेज रिमूव कर दिया और मैंने भैया से कहा कि भैया आई एम सो सॉरी, आप हाथ नीचे कर लीजिए। क्या होगा, इम्प्रेशंस रह जाएंगे, दर्द रह जाएगा, इसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक चुका होगा, अब वो हाथ को नीचे लेना चाहेंगे तो भी इनको तकलीफ होगी, यस और नो। और अगर ये सिलसिला लंबा रहा तो पॉसिबल कि इनका हाथ पैरालाइज्ड हो जाए, यस और नो, यस। थैंक यू भैया, थैंक यू। बड़ी से एक एग्जांपल से मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूं। एक छोटी सी चीज को यदि लंबे समय तक आप अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं तो हम आप सभी इस बात को समझते हैं कि हाथ के पैरालाइज्ड हो जाने की संभावना है, यस। चाहे अपनी ही कोई गलती या सामने वाले की ही कोई गलती को यदि लंबे समय तक हम अपने मन में पकड़ के रहते हैं तो आप बताइए, तो रिलेशनशिप विल ऑल्सो गेट पैरालाइज्ड, हमारा मन पैरालाइज्ड हो जाएगा। आप जब कभी भी फ्री होंगे आपको क्या याद आएगा, अपनी वही गलती या सामने वाले के द्वारा किया हुआ वही बिहेवियर जो आपको कभी खटक गया है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इस इंस्टीट्यूशन में हमें परमात्मा ने सिखाया कि हमें माफ करना आना चाहिए, खुद को भी और औरों को भी। किसी ने बहुत खूब कहा, जिंदगी को हमने यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। मुझे याद आता महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। कई बार हम कहते माफ कर दिए सामने वाले की गलती को तो आप वीक हैं, एक्शन लेना मतलब आप स्ट्रांग हैं। परंतु महात्मा गांधी जी की एक स्टेटमेंट मुझे याद आती है, उन्होंने कहा द वीक कैन नेवर फॉरगिव। क्या कहा, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, ही सेड फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रांग। इसलिए कहा टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो वो डिविनिटी जब हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो हम खुद के प्रति भी दयाशील हो जाते हैं और हम खुद की गलतियों को भी माफ कर पाते हैं और हम दूसरों की गलतियों को भी माफ कर पाते, नहीं तो हम वहीं स्टक हो जाएंगे। अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमें माफ करना आना चाहिए। एक प्रश्न, अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं औरों से क्या एक्सपेक्ट करूंगी। मान लीजिए मैंने इनके प्रति कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मेरे से गलती हो गई, मैं इनसे क्या एक्सपेक्ट करूंगी, वो मुझे माफ करे या नहीं करे। हाँ जी, करे। तो फिर यदि सामने वाले की गलती हो गई तो वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, यस। आपको कहीं पे रूल और रेगुलेशंस के वाइज स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, आप स्ट्रिक्ट होइए, मना नहीं है। लेकिन यहां पर ये जो हम फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं वो किस लेवल पे, वो किस लेवल पे, वो मेंटल लेवल पे। कई बार एक्शन लेना पड़ता है। बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी करता है तो माँ उसे बांध देती है, अब कर शैतानी, वो भी करना पड़ता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ने हमें सिखाया इस मेंटल लेवल पे उस बच्चे के प्रति गुस्सा या उस बच्चे के प्रति जरा भी बदले की भावना हमारे मन में कतई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो बात आ जाती है वो फिर कहां आती है, जो बात यहां आ जाती है वो फिर यहां आती है और फिर वो धीरे धीरे हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें उन बातों को यहां पर नहीं पकड़ना है। बाकी आप कहेंगे दीदी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक बंदा ढीला ढाला है, हम उसको स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तो पूरे वो सब कुछ जहां जो आवश्यक है आप भले करिए, लेकिन इस लेवल पे हर एक के लिए हमारे मन में गुड विशेस वो बहुत जरूरी है, और वही चीज हमारे संबंधों को मधुर बनाने में हेल्प करती है। तो एक बार हाथ ऐसे करिए। हां जी, मैं जो बोलूंगी मेरे साथ बोलते जाइएगा। लेट वी गो फास्ट। ओम शांति। मैं इस धरती पे भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक विशेष आत्मा हूं। मेरे अंदर अनेक विशेषताएं हैं, हां कुछ कमियां भी हैं, परंतु यदि प्रयास करूं उन कमियों को दूर कर सकती हूं। मैं इस संसार में अपने आप में यूनिक हूं, बिल्कुल मेरे जैसा। मेरे बोलचाल, मेरे रहन सहन, आचार व्यवहार दूसरा किसी का भी नहीं है। मैं यूनिक हूं। मैं जो हूं, जैसी हूं, भगवान की संतान हूं, विशेष हूं, महान हूं, बहुत अच्छी हूं। थोड़ा अच्छे से थपथपाइए अपने आप को। हां जी, अप्रिशिएट जो है, जैसे हैं। हजारों गलतियां होती हैं, सामने वाला मेरे से बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अच्छा है, डजंट मैटर। जो हूं, जैसी हूं, भगवान मैं आपकी हूं और बहुत अच्छी हूं। स्पिरिचुअलिटी में हमें ये सिखाया जाता है कि रोज सुबह उठकर हमें ये जरूर दोहराना चाहिए। क्या एक बार दोहराइए। मैं, थोड़ा अच्छे से बोलिए, मैं जो हूं, जैसे अब दूसरा लेवल है विथ अदर्स। उसमें हमारा वर्क प्लेस भी आता है, उसमें हमारी फैमिली भी आती है, और उसमें समाज भी आता है, सोसाइटी भी आता है। तो कभी भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो वी ऑलवेज वर्क इन अ टीम। यस और नो? यस और नो? वी ऑलवेज वर्क इन अ टीम। कोई शादी है तो भी टीम वर्क होता है, आपकी कोई पोस्टिंग है कहीं पे और वहां पे आपको कोई मूवमेंट पे जाना है तो भी इट्स अ टीम वर्क। अभी उड़ीसा में वो रेल एक्सीडेंट हुआ तो किसी एक ने नहीं सॉल्व किया, इट वॉज अ एनडीआरएफ और भी बहुत सारे फोर्सेस का सपोर्ट रहा, इट वॉज ऑलवेज अ टीम वर्क। कहीं पे भी कुछ भी हमला हो गया तो इट इज अ टीम वर्क। तो हमें अपने टीम को स्ट्रांग बनाना बहुत बहुत जरूरी है, और टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ बातें हमें अटेंशन में लाने की जरूरत है जो यहां पे लिखा गया है। ट्रस्ट, एम्पथी, अप्रिशिएट अदर्स और मोटिवेट अदर्स। आप यहां पर आए, यहां पे लगभग 350 की संख्या में अभी डेलीगेट्स और कुछ हमारे सेवाधारी या में भी 400 की संख्या में हैं। आपने देखा कोई किसी को ऑर्डर करते हुए? स्मूथ चल रहा है सब कुछ? कुछ कमियां भी हो सकती है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू गिव अस फीडबैक, लेकिन मैक्सिमम आपने ऑब्जर्व किया होगा सब कुछ ऑटोमेटिक स्मूथ चल रहा है। बता सकते हैं कारण क्या है? टीम वर्क। यस, क्या कारण है? सेल्फ मोटिवेशन। ओके, हां जी, सद्भावना है, सबके अंदर सद्भावना है। ओके, व्हाट एल्स? विश्वास। ओके ओके, इंस्टीट्यूशनल इथॉस है, वही अपने आप में इतने स्ट्रांग और क्लियर है कि वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हैं। एक शब्द है ड्यूटी और एक शब्द है सेवा, दोनों में फर्क है, क्या फर्क है? सेवा स्वैच्छिक है और ड्यूटी करना पड़ता है, यू आर फोर्स्ड टू डू। जब आपकी ड्यूटी स्वैच्छिक हो जाएगी, जब आपकी ड्यूटी स्वैच्छिक हो जाएगी, तब ये ट्रस्ट वाली बात अपने आप आ जाएगी। एक एग्जांपल देती हूं, अगर हम सेवा समझें और मुझे 10 लोगों को अटेंड करने की सेवा मिली, मैंने वो पूरा किया और फिर मुझे यहां के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर निर्मला दीदी जी ने कहा कि बहन आप और 5 लोग आ रहे हैं, इफ यू ओंट माइंड थोड़ा उनकी सेवा करेंगी, तो व्हाट शल आई से? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे और 5 लोगों की सेवा करने का ये अवसर मिला है। पर मेरी ड्यूटी, मैंने खैर फौज में होता नहीं है, फौज में ड्यूटी ओवर ड्यूटी भी ओवर ड्यूटी नहीं है, इट्स ड्यूटी ओनली, पर इन जनरल बता रही हूं। अगर मेरी ड्यूटी पूरी हुई और उसके बाद, एक एग्जांपल ले लेती हूं, बहुत सारी बहनें बैठी हैं, आपके घर में खाना बन गया है, सारे मेंबर्स खाना खा चुके हैं और तब आपको कॉल आता है या फिर मेहमान, वैसे अतिथियों की कोई तिथि होती नहीं है तभी वो अतिथि कहलाते हैं, वो आके पहुंच गए, अब एक दाना भी खाना नहीं है, आप सब खा पी के खत्म कर दिए क्योंकि आपको पता है शाम को फ्रेश बनेगा, ठीक है। अब वो जो अतिथि आए उनको देख के आप बोलेंगे अरे वाह आप आए बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मनी मन क्या सोचेंगे? आप भोजन के टाइम पे पहुंचे हैं भैया, इतनी तो करसी हमारी बनती है कि हम उनको फूड ऑफर करेंगे, खाना ऑफर करेंगे, लेकिन बहन को थॉट क्या चल रहा है? नहीं, मेड नहीं, वो खाना खुद ही बनाती है। आप में से कितने बहने हैं जो कहेंगे कोई बात नहीं दोबारा बना लेंगे? ओके गुड गुड। और कोई कोई होंगे जिनको लगेगा कि अरे पहले थोड़ा बता दिए होते तो खाना पहले ही थोड़ा ज्यादा बना लिए होते, चीजों को और थोड़ा बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा सकता था। कोई बात नहीं, बना तो लेंगे लेकिन फिर से उतना ही टाइम उतनी ही मेहनत लग जाएगी। यस, जब इस चीज को हम सेवा में चेंज कर देंगे तो क्या होगा? हां जी, तो हमें फिर से बनाना अखरेगा नहीं। आप यहां जो देख रहे हैं सब कुछ स्मूथ चल रहा है, उसका एक कारण है कि हर व्यक्ति उसको दी हुई कार्य को क्या समझता है? सेवा समझता है। और सेवा करने को मिलना, इसे हम अपना भाग्य समझते हैं। 5 लोगों की सेवा का अवसर मिला, कम भाग्य। 10 लोगों की सेवा का अवसर मिला, 20 लोगों का सेवा का अवसर मिला, और ज्यादा भाग्य। और उसी से वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। एक ने किसी को जवाबदारी दे दी, विश्वास है कि वो अपनी जवाबदारी को निभाएंगे, एंड दैट इज द वे सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है। दूसरा बताया एम्पथी, जिसको हम कहते हैं पुटिंग योरसेल्फ इनटू अदर्स शूज। किसी को आदिदास का शूज है और वो कंफर्टेबल नहीं है, आप कहेंगे कमाल है आदिदास का शूज भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, अरे भाई कुछ तो कारण होगा। आप अपने पैर डालिए तो आपको समझ में आएगा कि भाई आदिदास का शूज होने के बावजूद भी कंफर्टेबल क्यों नहीं है। आप बिना कुछ किए, बिना अपने पैर उसमें डाले, आप कह नहीं सकते कि भी आदिदास का शूज भी कंफर्टेबल नहीं है। हर एक की हालातें हैं, हम जब उसको समझ जाते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति समानुभूति की भावना आती। सिंपथी से ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्पथी है। फिर ऑटोमेटिकली हम वो कर पाते हैं जो शायद उसकी जगह पर होते तो हम दूसरे से कहीं अपेक्षा करते थे। एंड तीसरा बताया है अप्रिशिएट अदर्स। इसमें कुछ बातें जो हमने अध्ययन से जुड़कर हमारे बड़ों से सीखा है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। कोई मुझे अप्रिशिएट करे तो अच्छा लगेगा, यस और नो? आपको कोई अप्रिशिएट करे तो ऑब्वियस से आपको अच्छा लगेगा, पर अप्रिशिएट कौन कर सकते हैं? जो अंदर से स्ट्रांग है, शांत है, वो अप्रिशिएट कर सकते हैं. अच्छा, अप्रिशिएट कौन कर सकते हैं? कैन एवरी वन अप्रिशिएट फॉर द गुड दे डू? हर कोई अप्रिशिएट कर नहीं पाते हैं. कर सकते हैं, यस यू आर राइट, कर सकते हैं, परंतु हर कोई कर नहीं पाते. मैं आपको यही पूछ रही हूं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अप्रिशिएट करने के, जहां करना चाहिए वहां भी करने नहीं देती हैं. यस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटी, यस, जेलसी, यस, ईगो, राइट राइट, एरोगेंस, यस. कई लोग न्यूट्रल होते हैं, माना गलत करे तो भी नहीं बोलते और अच्छा करे तो भी नहीं बोलते. ओके, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी ये सारी चीजें डिफर करती हैं, परंतु अप्रिशिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ अप्रिशिएशन होना बहुत जरूरी है. हमारा जो सेल्फ एस्टीम का लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए, तब हम दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं. और एक रिसर्च हुआ था कि अप्रिशिएट दूसरे को मोटिवेट करने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. मनी, प्रमोशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स निकाले गए और उसमें एक फैक्टर अप्रिशिएशन भी था. और उस सर्वे में यह पाया गया द फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू मोटिवेट अ पर्सन इज अप्रिशिएशन. और हमारे बड़ों ने हमें सिखाया अप्रिसिएशन शुड बी इन द पब्लिक, अप्रिसिएशन शुड बी इन द पब्लिक एंड करेक्शन. बातें तो दोनों ही होती हैं, सामने वाले की गलतियां भी सामने आती हैं, तो सामने वाले के कुछ अच्छे अचीवमेंट्स भी सामने आते हैं. करेक्शन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, करेक्शन मस्ट बी डन इन प्राइवेट, ठीक है, ताकि वो हर्ट फील ना करे, उनके ईगो को ठेस ना पहुंचे. सेकेंड थिंग, यदि आपने किसी को कोई कार्य दिया, उन्होंने अपना कार्य अपनी समझ के हिसाब से किया, लेकिन आपको वो कार्य जैसा चाहिए था वैसा नहीं किया, आपको उसमें पॉइंट आउट करने के लिए चार पांच बातें हैं, भाई ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप में से कोई दो जने आ जाएंगे जो इसको यहां पे रोल प्ले करके बताना चाहेंगे? यस प्लीज. हां जी, कोई और आएंगे तो अच्छा लगेगा. अच्छा, चलिए आप ही आ जाइए. सिचुएशन क्या समझ गए? आपने इनको एक काम दिया करने के लिए, इन्होंने किया भी, अपना समय भी लगाया, मेहनत भी की और किया भी, परंतु उतना अच्छा नहीं किया जितना कि आपको चाहिए था. हाँ जी, ठीक है, तो अभी आप इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, करिए. पहले क्या किया? पहले अप्रिशिएट किया, उसके बाद जो भी लैकुनास रह गई हैं, वो लैकुनास को इन्होंने पॉइंट आउट किया. हमारे बड़ों ने हमें सिखाया फर्स्ट प्रेज, देन रेज द पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट. फर्स्ट प्रेज, पहले उनकी प्रशंसा करिए कि आपने बहुत अच्छा किया, पिछले एक महीने से लगे हुए हैं, आई नो इस प्रोजेक्ट के पीछे आप एक महीने से लगे हुए, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा, परंतु क्या होगा इससे, क्या होगा इससे? उन्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना इजी हो जाएगा, क्योंकि पहले उनका ईगो सैटिस्फाई हो गया. कैसे? क्योंकि आपने अप्रिशिएट किया, आपने प्रेज किया, अब वो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे. तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम जो डेली डिस्कोर्स पढ़ते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, जो परमात्मा की डायरेक्ट वाणी होती है, जो आप आगे इसके बारे में जानेंगे, उसमें हमें ये सारी बातें सिखाई जाती है कि पहले प्रेज करो, प्रशंसा करो, अप्रिशिएट करो, ताकि उनका ईगो सैटिस्फाई हो जाए। अच्छा, आप में से कौन है जिसको ईगो नहीं है? थोड़ा हाथ ऊपर करिएगा। अच्छा, गुड। किसी को अपने पोस्ट को लेके ईगो है, किसी को अपने मनी पावर के कारण ईगो है। मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर हैं, कुछ भी है, उसका भी ईगो हो जाता है, यस और नो। मैं बहुत रूपवान हूं, उसका भी ईगो होता है। मैं बहुत हैंडसम हूं, उसका भी ईगो होता है। मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूं, उसका भी। अच्छा, मैं बहुत ओबीडियंट हूं, उसका भी ईगो होता है। मैं बहुत पंक्चुअल हूं, उसका भी। हम इन सबको क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टन करना पड़ेगा, तभी जाकर हम सामने वाले को अप्रिशिएट कर सकते हैं। उसकी 10 गलतियों के बाद भी उसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं। और इसे आप आजमा के देखिए, हमने उसको रियल लाइफ में आजमा के देखा है। फिर आप उसको 10 गलतियां पॉइंट आउट करेंगे, वो 10ों के 10 गलतियों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसे इंप्रूव करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। अगर आप पहली बात को मिस कर जाते हैं, प्रेज वाली बात को, तो सब गड़बड़ा जाएगा। इतना मेहनत किया वो तो दिखता नहीं है, और इतनी सी चूक हो गई, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मोटिवेट अदर्स। तो ये कुछ बातें हैं जिसको यदि हम अपनाते हैं, तो मेरी समझ में बहुत सारे रिलेशनशिप को लेकर जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपके जीवन में, इट्स अ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन, आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे आपकी बोलचाल बंद हो? किसी के है तो थोड़ा हाथ ऊपर करिएगा। आपकी बोली बंद है उनसे? ओके, वन, एक बार फिर से हाथ खड़े करिए, लेट मी सी हाउ मेनी। ओके, मैं आई रिक्वेस्ट यू समथिंग, क्या आप अपने मन को समझाकर उन्हें कॉल कर सकते हैं आज? पॉसिबल? आपके लिए चैलेंज है, आई नो। जी, इसलिए कहते हैं स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, परंतु जब स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, कई बार हम अड़ जाते हैं। Am I right? स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है तो कई बार हम अड़ जाते हैं। मुझे राइटर नहीं याद है, लेकिन एक बहुत अच्छा सा कोटेशन मैंने कभी पढ़ा था और इसको हमने बहुत गहराई से समझने की कोशिश भी की। उसमें यह था, नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। आपकी सहमति के बिना आपको कोई नीचा महसूस नहीं करा सकता है। मैं एक्सप्लेन करती हूं। मान लीजिए मैं आपको कोई अच्छी चीज दूं, तो इट्स ऑब्वियस आप उसे खुशी खुशी मुझसे ले लेंगे। लेकिन मैं अगर कचरे का एक पोटला आपको दूं, क्या करेंगी आप? यस प्लीज, क्या करेंगे आप? आप उसे अफकोर्स नहीं लेंगे। अगर मैंने आपको जो दिया वो आपने मुझसे नहीं लिया, तो वो चीज किसके पास रही? वो चीज देने वाले के पास रह गई। जब वो चीज आपके पास आई नहीं, तो उसकी बदबू आएगी आपके पास? आएगी? उसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो हमने आध्यात्मिकता में समझा, अच्छा और बुरा, ये समझ तो हमें मिल चुकी है, परंतु क्या लेना और क्या नहीं लेना, और नहीं लेने की चीज, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी, एक ऐसे व्यक्तित्व के नाम से मैंने जो पढ़ा था वो मैं आपके सामने कोट कर रही हूं, आप बताइएगा वो व्यक्तित्व कौन। एक ऐसे व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो अपने शपथ समारोह में शपथ ले रहे थे, तो उस समय उस समारोह में उपस्थित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा, महाशय आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिताजी मोची थे, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिताजी मोची थे। कौन सा समारोह था? ओथ टेकिंग सेरेमनी। किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति ले रहे हैं ओथ और उस समारोह में किसी व्यक्ति ने पॉइंट आउट किया, महाशय आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि आपके पिताजी मोची थे। व्हाट कैन बी द रिएक्शन? कुछ भी हो सकता है। स्माइल। ओके। इन्होंने कहा कि मैडम आपने बिल्कुल, मैडम सर कौन थे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जो भी थे, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे पिताजी मोची थे, जूते सिया करते थे और इतने अच्छे जूते सीते थे कि कोई कंप्लेन की मार्जिन नहीं रहती थी। मैं भी अच्छे जूते सी लेता हूं, आपको कभी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। ये रिस्पॉन्स भी रियल लाइफ में पॉसिबल है। स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा। लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ चॉइसेस। हमें इस विद्यालय में सिखाया जाता है, न दुख देना है न दुख लेना है। न देना है ये तो इट्स क्लियर, कई बार हम अपने एक्शन से भी दुख दे जाते हैं। आपने कुछ किया नहीं, आपने किसी को इग्नोर किया। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे चार लोग बैठे हैं, मेरे पास कोई चीज है, मैंने इनको ऑफर किया, इनको किया, पर इनको नहीं किया, वो इग्नोरेंस भी क्या है? वो इग्नोरेंस भी उनके दुख का कारण बन सकता है, बट इट इज अ चॉइस। यस और नो? यस। वो दुखी होंगी या नहीं होंगी, या वो दुखी होंगे या नहीं होंगे, इट्स अ चॉइस। दुख लेना नहीं है, वो भी हमें आना चाहिए। सामने वाले ने क्या बोला उसका असर मुझ पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दैट्स अगेन अ चॉइस। कल आपने सुना ना कमल भाई को, कि गेव अ वेरी गुड कोटेशन, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? अगर हमारी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना इतनी ऊंची और अच्छी हो जाती है तो फिर ये चीजें हमें मैटर नहीं करती। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगी। हम सब इसी लेवल पे बैठे हैं, मैं भी उसी लेवल पे हूं जिस लेवल पे आप हैं। चलो मैं नीचे आ जाती हूं, अब हम सेम लेवल पे हैं, ठीक है? अब मुझे जो चीज जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी नजर आ रही है। यस और नो? ये कुर्सी जितनी बड़ी है, आप जितने, आपका कद जैसा है, जो है मोटे ताजे आप जैसे भी हैं, मुझे एग्जैक्टली वैसा ही नजर आ रहा है। अगर मैं अपने आप को थोड़ा ऊपर ले जाऊं, से फ्लाइट में बैठकर जब हम ऊपर फ्लाई करते हैं तो नीचे की चीजें क्या हो जाती है? यस, जो इतना बड़ा बिल्डिंग है वो कितना दिखाई देगा, और थोड़ा ऊपर चले जाऊं तो, और ऊपर चले जाऊं तो, 15,000 फीट की हाइट पे चले जाऊं तो, और आध्यात्मिकता में परमात्मा ने हमें यही सिखाया, जब हम अपने मन के लेवल को एक एलिवेशन पे ले जाते हैं, वही बातें जो कल तक हमें बहुत बड़ी लग रही थी, बहुत भारी लग रही थी, बहुत मुश्किल लग रही थी, और आज हमने थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने अंदर लिया, मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया, और हम अपने मन के स्तर को थोड़ा एलिवेशन पे ले जाते हैं, वही बातें, वही मुश्किलातें, वही हालातें हमको क्या लगेंगी, वही हालातें, वही बातें हमको बहुत छोटी लगेंगी। फिर हम माफ कर सकेंगे, जिन बातों से हम हर्ट हुए थे, वो जो हर्ट फीलिंग है, हम उससे अपने आप को बाहर ला सकेंगे। मुझे बताइए, यदि हम फर्गीव सामने वाले को नहीं कर पा रहे हैं, उससे हमारी बोलचाल बंद है और हम उसे शुरू नहीं कर पा रहे, इसे बर्डन कौन है? किसी के प्रति बदले की भावना बार बार आ रही है, उसका मैं ये करके ही रहूंगी, उसका ऐसा बिगाड़ा करके ही रहूंगी, तो ये जो ग्रज है, ये ग्रज का भी बोझ होता है। और हम थोड़ा सा फर्गीव नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए इतना सारा बोझ लेकर चलने के लिए तैयार हैं, पर अच्छा क्या होगा, अच्छा क्या होगा, थोड़ा सा ईगो को डाउन करके, थोड़ा सा फर्गीवनेस, वो डिवाइन इनसाइट अपने अंदर लाते हुए, यदि हम माफ कर देंगे और सामने वाले से जो बोलचाल बंद हो गई है उसे शुरू कर देंगे, आपने जिससे बोली बंद है उससे एक बार बोल के देखिए, और उसके नेक्स्ट मोमेंट के आपकी मन की स्थिति को आप जरा चेक करिएगा, क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस दिखाई देगा? जी हाँ, यस, अच्छा, फॉर्मेलिटी हो जाएगी, अच्छा। एक अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति, उसे किसी ने कहा कि किसी ज्योतिष ने कहा कि आपकी डेथ आज शाम को ही होने वाली है, सुबह का टाइम था, तो बहुत लोगों से बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो उसने सोचा कि किसी से बोली उसकी बंद थी और वो उसके पास गया कि अब तो मरना है, इंसान क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, वो सारी चीजें उसके मन में आने लगी जो नॉर्मली ऐसी हालातों में आती हैं, तो उसके मन में भी आने लगी, क्या रखा है, किसी से बोलचाल बंद करने में क्या मिलेगा। तो उसने सोचा कि इट्स बेटर कि इस चीज को यही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आज उस आत्मा के साथ, उस व्यक्ति के साथ आपकी एनर्जी एक्सचेंज नेगेटिव है। मान लो मेरी डेथ हो गई, मान लो मेरी डेथ हो गई, नेक्स्ट लाइफ में हम जिस भी रूप में मिलेंगे, वो एक्सचेंज कहां से शुरू होगा? पॉजिटिव एक्सचेंज से नहीं शुरू होने वाला है, वो शुरू नेगेटिव एक्सचेंज से ही होने वाला है। अगर इस चीज को हम समझ पाते हैं तो हमें लगता है कि हमें क्या करना है, हमें यहीं पर उसे नलीफाई कर देना है। उस व्यक्ति के मन में भी यही आया कि वैसे इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। उस बंदे के पास वो जाता है कि बोला, भाई तूने भी गलती की, मैंने भी गलती की, एक चीज जो मैंने समझा है, एक हाथ से ताली, जो इस बात को मानते हैं जरा हाथ खड़ा करिएगा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, यानी जब कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है उसमें गलती एक की नहीं होती है, दोनों की होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा हो सकती है। डू यू एग्री? लेकिन हमें अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए भी थोड़ा ईगो के लेवल को डाउन करना पड़ता है, ठीक है? तो मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे ही आप इस फर्गीवनेस को अपने अंदर ले आते हैं तो आपका मन हल्का और शांत हो जाता है, और जो इतना सारा बोझ है उस बोझ से आप अपने आप को फ्री कर पाते हैं, ठीक है? एंड द नेक्स्ट वन इज, रिलेशनशिप विथ नेचर। हमें थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए कि हम नेचर में अपने आप को नेचर के साथ रखें, एंजॉय करें, ग्रीनरी को हम देखें, वो आंखों के लिए भी सूदिंग होता है और मन के लिए भी हेल्दी होता है। हम थोड़ा आजकल लोग पेट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पेट्स पलट के बोलते नहीं है, हाँ जी, फोन नहीं यूज करते, अपने आप में बिजी नहीं होते हैं, वो किसी की कंपनी चाहते हैं। तो देखिए, है बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन इन हर छोटी बात का असर हमारे लाइफ पे होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर रिलेशनशिप विथ द सुप्रीम, जिसे हम परमात्मा कहते, ऑलमाइटी कहते, गॉड फादर कहते, उनके साथ है कोई रिश्ता हमारा? है कोई रिश्ता हमारा? क्या रिश्ता है? ओके, ही इज द फादर, गुड, हम उनके बच्चे हैं जी, बस एक ही रिश्ता। अच्छा, वो हमारी फ्रेंड है, ओके, वही हमारी दुनिया को चलाते हैं। ओके, कोई और रिलेशन है? अच्छा, भाई साहब शायद हमारे डेली डिस्कोर्स को सुनते हैं, हमारे भजनों में हमने गाया, प्रार्थनाओं में हमने गाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। भगवान एक ऐसी हस्ती है जिसके साथ आप जो नाता जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, और वो उस नाते को जितना बखूबी निभाएंगे शायद संसार का कोई इंसान निभा नहीं सकता है। भगवान का साथ एक ऐसा साथ होता है जो हमसे कभी छूटता, हम छा साथ छोड़ दें पर वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। मेरा आपसे एक प्रश्न है, अगर आपके पास ऑप्शन है, आप उंगली भगवान को दो, दैट इज ऑप्शन वन, और दूसरा ऑप्शन है आप भगवान की उंगली पकड़ो, एक है आप अपनी उंगली भगवान को पकड़वा दो, और दूसरा ऑप्शन क्या है, आप भगवान की उंगली पकड़ लो, विच इज बेटर? जिनको लगता है सेकेंड ऑप्शन इज बेटर, कि मैं भगवान की उंगली पकड़ लूं, ओके, आई टेल यू फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर। क्यों? हम पकड़े हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा हाथ कभी ढीला पड़ भी जाए, लेकिन अगर उसने पकड़ा है, हमने उसे पकड़वाया है, तो ही इज द वन जो कभी हमारी उंगली छोड़ नहीं सकते। एक को राजी करना इजी या बहुतों को राजी करना इजी? एक को राजी करना ऑब्वियसली बहुतों को राजी करना करने की तुलना में एक को राजी करना इजी है। आप कहेंगे अगर वो बंदा ऐसा ही खड़ूस हो तो उसे एक को भी राजी करना बहुत भारी पड़ सकता है, परंतु यहां मैं भगवान को राजी करने की बात कह रही हूं। अगर एक भगवान को हम राजी कर देंगे तो जो हमने आध्यात्मिकता में समझा है, अगर जो प्रिंसिपल्स, जो एथिक्स, जो कोड ऑफ कंडक्ट वो हम सभी के लिए तैयार किए हैं, अगर उसके मुताबिक हम चलते हैं और उस एक को हम राजी कर देते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल गेट सेटिस्फाइड। आपसे असंख्य लोग राजी हो जाएंगे, एकाधा एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिनका सेल्फिश कंसर्न फुलफिल नहीं होता होगा, शायद वो आपसे राजी ना हो, बाकी मेजॉरिटी आपसे राजी हो जाएंगे। ठीक है, अब भगवान से रिश्ता जोड़ना और भगवान से रिश्ते को बनाए रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप हेल्दी तब होते हैं जब हमारे अंदर गिविंग मेंटालिटी डेवलप होती है। कौन सी मेंटालिटी? गिविंग मेंटालिटी डेवलप होती है। यदि मैं किसी कपड़े के दुकान में जाऊं और मैं वहां पर कहूं कि भैया 1 किलो चावल दे देना, और वो कहता सॉरी मेरे पास नहीं है, गलत कौन? वो दे नहीं पा रहा है, उसके पास स्टॉक नहीं है, वो गलत? या मैं कपड़े के दुकान में चावल मांग रही हूं, मैं गलत? यस, गलत जगह यदि मैंने गलत चीज मांगी शूज के दुकान में जाके मैं कपड़े मांगू तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो आज भी संसार में हर व्यक्ति बाहर से भले संपन्न है लेकिन अंदर से खाली है। खुशी, शांति, धीरज, प्रेम, शक्ति, यदि इन चीजों की बात करी जाए तो मैं समझती हूं शायद आप में से बहुत थोड़े ही होंगे जो ये कहेंगे कि हां दीदी, इन चीजों में भी हम अपने आप को संपन्न महसूस करते हैं। अक्सर ये सत्य है कि इन सभी चीजों से हम खाली हैं और वही चीजें हमें दूसरों से एक्सपेक्ट करें और दूसरे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए दरारें संबंधों में आ रही है। माना कि मैंने गलती की, उनका बोलना जायज था, पर वही बात प्यार से भी तो बोल सकते थे। क्योंकि गुस्से से बोला, इरिटेट होके बोला, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज ऐसा था इसलिए हमको बहुत खटक गया और हम डिस्टर्ब हो गए। अब हम चाहते हैं उसका चेहरा भी कभी नहीं देखे, ये कोई बोलने का तरीका होता है क्या? बट वो बेचारा खुद अपने अंदर प्यार की कमी महसूस कर रहा है तो वो सामने वाले से प्यार से कहां बात करेगा। तो जब देने की बात आती है, दे वही सकता है जिसके पास स्टॉक भरपूर होगा। और स्टॉक हाउस कौन है? मैंने सुना है फौज में बड़े अच्छे कैंटीन होते हैं, सब मिलता है। बट 2 किलो धीरज मिल जाएगी, 3 किलो शांति, 5 किलो प्रेम नहीं। इन चीजों को पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपके दिल में प्रेम है, बेशुमार शांति है, असीम शक्तियों का अनुभव आप कर रहे हैं, आप अपने आप से संतुष्ट हैं, तो डेफिनेटली आपका जो एक्शन होगा, आपका जो बिहेवियर होगा, वो भी इतना पीसफुल, इतना लवफुल और इतना औरों को सेटिस्फेक्शन देने वाला होगा कि जो छोटी मोटी बातें हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में हमारे सामने आती हैं, हम उन चीजों को बहुत अच्छे से डील कर सकेंगे। मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, इस धरती पे मैं आई हूं, मुझे सिर्फ देना है। किससे अनबन होगी फिर? मुझे एक वीडियो याद आता है, वो वीडियो मेरे पेन ड्राइव में नहीं है। एक लेडी, एक लड़का खड़ा हुआ होता है, उससे कहती है कि उसका कोई भारी सा सामान होता है, वो कहती है कि ये सामान थोड़ा यहां से उठाने में मेरे को मदद कर सकता है, तो लड़का हां भरता है परंतु करता नहीं है। तो वो मान लीजिए यहां खड़ी है और उसका वो हेवी सा सामान थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ा है और बाजू में एक लड़का है और वो उस लड़के से कहती है मुझे ये भारी सा सामान उठाने में थोड़ा हेल्प करोगे? हां भरता है पर करता नहीं है। वो 1 मिनट के लिए उसकी ओर देखती है और फिर वो खुद उस भारी से सामान को उठाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो उस जहां खड़ी थी उसका जो रूफ है वो नीचे आ जाता है, बच जाती है वो लड़का अपनी जगह पे खड़ा है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। बट ये क्योंकि उसे लगा भी हां भरा और किया भी नहीं, तो उसे क्या करना पड़ा? खुद से करना पड़ा। तो वहां से वो हट गई और बच गई। जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है, अनसीन वे में उसमें कुछ अच्छाई समाई हुई है। अगर इस चीज को हम दिल से स्वीकार कर सकते हैं तो हर एक प्रकार के व्यक्तित्व के साथ, हर एक सिचुएशन में हम खुश रह सकते हैं, हर एक के साथ अपना व्यवहार बहुत प्रेमपूर्ण बना सकते हैं। तो 5 मिनट मेडिटेशन के साथ वाइंड अप करेंगे। एक बार खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। हां जी, थोड़ा अपने बगल वाले के पीठ थपथपा दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं। हां जी, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हाँ जी, पैर के पंजों पर खड़े हो जाइए, हाथों को लॉक करिए, दोनों हाँ जी हथेलियों को ऊपर करिए, थोड़ा छत को धक्का लगाइए, ट्राई करिए, क्या पता लग जाए। ओके, थोड़ा ट्विस्ट करिए, लेफ्ट राइट, हाँ जी, रिलैक्स, बैठ जाइए। सभी 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाएंगे। आपके हाथ में कुछ भी है तो उसे बाजू में रख दीजिए, एकदम फ्री होकर बैठेंगे। रिलैक्स योरसेल्फ। अपने लिए एक बहुत सुंदर सोच, मैं इस संसार में एक अद्वितीय रचना हूं, यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। आई हैव माई ओन पोटेंशियल, ओन एबिलिटीज, ओन वीकनेसेस। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन विद अदर्स। हो सकता है मुझे कोई काम न भी आता हो, पर बहुत कुछ आता भी है। अप्रिशिएट द सेल्फ। अपने लिए वो रेस्पेक्ट की फीलिंग क्रिएट करें। एट अ टाइम एक फादर या मदर का रोल, एक हस्बैंड या एक वाइफ का रोल, एक बेटा या बेटी का रोल, कितना कुछ कर रहे हैं हम। अप्रिशिएट योर पोटेंशियल। भगवान ने मुझे असीम ऊर्जा भर के भेजा है। मेरा ध्यान मेरे मस्तक के बीच उस चमकते हुए ज्योति बिंदु पर है। मुझ आत्मा की जर्नी लाइफ आफ्टर लाइफ चलती आई है। मैंने अब तक जो किया उसका परिणाम मेरे सामने है। आज से, अभी से मैं जो करूंगी उसका परिणाम मेरे सामने भविष्य में होगा। एंड टुडे एट दिस मोमेंट आई डिसाइड, आई चूज टू टेक अ टर्न। अपने लिए और ज्यादा लव, रेस्पेक्ट, अप्रिशिएशन के साथ। जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा स्वीकार करते हुए मुझे मेरे लाइफ को पीसफुल,
और खुशहाल बनाना है। I choose to remain happy. I choose to give happiness. And I'm sure happiness only will come back. I choose to forgive. I choose to forget my mistakes, others' mistakes. मेरे अंदर वो डिविनिटी समाई हुई है जो मैं किसी पर दया कर सकूं, किसी को क्षमा कर सकूं। I do have the potential. और सबसे अहमियत की बात है, सारी सृष्टि को चलाने वाला जगत नियंता वो मेरा साथी है। अपने मन को कनेक्ट करें उस परम शक्ति के साथ और महसूस करें कि उनसे रंग बिरंगी किरणें आकर मुझ में समा रही है, शांति, प्रेम, खुशी। I am full of energy. और अपने उन संबंधों को सामने लाए जहां थोड़ी कड़वाहट है, उन्हें दिल से माफी मांग ले यदि मुझसे कोई गलती हुई है। जैसे हैं मुझे स्वीकार है, मुझसे पॉजिटिव एनर्जी उनकी ओर जा रही है, मेरे दिल में गुड विशेस, आपका भला हो, आप बहुत तरक्की करें, आप महसूस करें जैसे ही ये पॉजिटिव एनर्जी उन तक पहुंच रही है, उनके मन का असंतोष भाव खत्म होता जा रहा है, मेरा मन भी रिलैक्स होते जा रहा है। मेरा भगवान तभी राजी होगा जब मैं माफ कर सकूं। और जब भगवान मुझसे राजी है तो सारा संसार मुझसे ऑटोमेटिक राजी हो जाएगा। एक डिवाइन फीलिंग अपने अंदर, संसार में सबके संपर्क में आते, चाहे मेरे बॉस, मेरे सबॉर्डिनेट्स, मेरे साथी, मेरे फैमिली फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी मुझे सिर्फ और सिर्फ देना है गुड विशेस, लव, पीस, ब्लेसिंग्स। मेरा मन एक ऐसे एलिवेशन पे पहुंच गया है जहां यहां की हर बात मुझे मामूली लगे, बहुत छोटी लगे। देखिए अपने रिलेशनशिप्स को, सबके साथ बहुत हेल्दी, खुशी वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला, रेस्पेक्ट वाला, केयर और कंसर्न वाला, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छा महसूस हो रहा है। ओम शांति।